ओम शांति। बेहत का यज्ञ, बेहत की सेवा, बेहत का बाप, बेहद का परिवार और इस बेहद के ड्रामा का सबसे सुखद परिणाम सत्ययुगी सृष्टि का आगमन। इस सत्ययुगी सृष्टि के शुभ आगमन हेतु परमपिता परमात्मा ने इस धरा पर विभिन्न पुष्पों की सुमधुर बगिया तैयार की, जो कि मधुबन की इस पावन धरा पर आने वाले हर आत्मन को एहसास कराती है। इसी श्रृंखला में एक पुष्प जिनके चेहरे की मधुर मुस्कान एक एक कदम में फरिश्तेपन का एहसास, शांत चित, प्रभु लगन में मगन रहने वाले आदरणीय भ्राता रामनाथ जी हम सब के मध्य हैं। भ्राता जी का हम सभी एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। आदरणीय भ्राता जी का जन्मोदय कर्नाटक में एक धार्मिक परिवार में हुआ। धार्मिक प्रवृत्ति और मेधावी व अनुशासित जीवन पर विश्वास रखने वाले भ्राता जी ने धारवाड़ से कॉमर्स में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद सन 1980 से इस रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ हेतु अपना सर्वस्व परमात्मा के हाथों में सौंप कर सेवाओं में अथक सहयोगी बनकर बाप दादा का नाम बाला करने में व्यस्त हो गए और छात्रों से लेकर उच्च पदाधिकारियों की सेवा करने में अनवरत अग्रसर हैं। वर्तमान में आप रिलीजियस विंग के हेड क्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आज हम सभी आपके ओजस्वी वचनामृत का मधुर श्रवण करेंगे। हमारा आज का विषय है ब्राह्मण जीवन बंधन मुक्त जीवन। मैं आदरणीय भाई साहब से अनुरोध करती हूँ, कृपया इस विषय पर प्रकाश डालें। आदरणीय रामनाथ भाई जी।
ओम शांति, ओम शांति। देखो, जब से हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, गॉडली यूनिवर्सिटी में आए, तब पता चला कि वर्तमान समय संगम युग है। न तो सारी दुनिया को, जिन्होंने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर ज्ञान नहीं सुना, उनके लिए कलयुगी है और कलयुग का अंतिम समय है। और हम बच्चों को जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ब्रह्मा कुमारी में आकर ज्ञान सुना, तो पता चला यह संगम युग है, कलयुग का अंतिम समय आ गया। अभी एक कदम उठाओ तो सत्ययुग है। तो जिसको ये ज्ञान समझ में आया, उनको लगा, उन बच्चों को, हम बच्चों को समझ में आया अभी क्या करना चाहिए। जो कुछ सारा कलप हम चल के आए, अंतिम समय है। अभी सभी प्रकार से कर्म बंधनों से मुक्त होकर, कर्मातीत बनकर परम धाम में जाना है, फिर सत्ययुग में आएंगे। अगर कर्मातीत नहीं बने, कर्म बंधनों से मुक्त नहीं बने, तो किए हुए कर्म इस शरीर के द्वारा ही हिसाब किताब चुक तो करना पड़ेगा। तो वो चुक तो करने के तरीके बहुत है। अचानक बीमारी आया, अचानक एक्सीडेंट हुआ, अचानक और कुछ हुआ, बिजनेस में नुकसान हुआ, ये सार बीमारी आ गई, बच्चे जन्मते ही लंगड़ा, अंधा, काला, गोरा, ये कौन कर रहा है? ये सारे किए हुए कर्मों का फल है। अभी आप पूछेंगे कि हमारे कर्म बंधन है, हमने, आपने कहा मेरे किए हुए कर्म है, कहां दिखाओ? अगर आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर को कहो मुझे कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर तुरंत दिखाता आपको ब्लड प्रेशर कितना है, शुगर कितना है, दिखाता है, फिर आपको कहते हैं ऑपरेशन करना, दवाई लेना, क्या करना, वो बाद में निर्णय। तो यहां भी अगर हमें कर्म बंधन है, हमने किए हुए पाप है, विकर्म है, पाप आत्मा हूं, पुण्य आत्मा हूं, देवात्मा कहते हो मैं कौन हूं, ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद तो बाबा गीत बजाता है कभी मुखड़ा देख ले प्राणी, ये मुखड़ा तो आईने में दिखाई देगा। जब हम रात को आंखें बंद करके सोते हैं, ये स्वप्न कहां से आते हैं, बाहर से तो नहीं आते है। हम आंखें बंद करके सोए हैं तो आत्मा ने अनेक जन्मों से क्या क्या किया हुआ है वो सारा संचित कर्म कहा वो अंदर भरा हुआ है। और रात को बुद्धि कभी सोती नहीं, मन सोता है, मन शांत हो गया नींद आ गया, नहीं हुआ तो नींद नहीं आती है। तो बुद्धि जागती ज्योत है, तो वो ये सारा रात को वीडियो देखता है। तो वीडियो देखने वाला कौन, स्वप्न कौन देखता है, उसमें भी हरेक व्यक्ति को चार प्रकार के स्वप्न आते हैं। उसमें दो प्रकार के अगर स्वप्न आते हैं बार बार, काम और क्रोध के, तब पाप आत्मा का। पुण्य आत्मा कम से कम एक महीने तक भी काम और क्रोध के स्वप्न नहीं आया, आप कह सकते हो मैं पुण्य आत्मा हूं। कल देवात्माओं, कल देवता बनेगा, आज ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण पुरुषार्थी है क्योंकि ब्रह्म ज्ञान मिल गया है। तो ये ज्ञान के कारण अपने आप को हम देखते हैं, हम कहां पहुंचे हैं, हमारे अंदर क्या है, अभी क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे आपने देखा कल रात को अव्यक्त बाप दादा के मुरली में भी तीव्र पुरुषार्थ के लिए बाबा ने कहा कि सवेरे अमृत वेले बाप बच्चों को शक्तियां देता है, वरदान देता है, लेकिन किसको, किसको देता है, सभी बच्चे हैं, जोग में सवेरे उठे नींद भी आ रही है, नहीं, ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर राजयोग है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी राजयोग सिखाया है, पतंजलि के अंदर भी राजयोग है, तो ब्रह्मा कुमार इसका राजयोग क्या है। तो बाबा रोज कहते हैं अपने को पहले आत्मा समझो, पाप शरीर नहीं कहा, बीमार शरीर, पाप आत्मा। तो जब भी सवेरे शाम दो दफा योग में बैठते हो कि हम शरीर में रहते हैं तो शरीर की भान रहता है, अपने आप जाता नहीं, मां बैठी अगर कोई माताजी, उनको जरूर याद आएगा 6 बज गए, बच्चों को खाना देना चाहिए, नाश्ता देना चाहिए, कोई डॉक्टर बैठा है उसको भी याद आएगा कि पेशेंट को इस समय दवाई देना है, ये उसका धर्म है। तो यहां गृहस्थ वालों का भी अपना धर्म है। तो हम कौन, ये रूहानी सत्संग है। तो कम से कम बाबा तो कहते हैं निरंतर आत्म अभिमानी बनो, आज भी कहा देही अभिमानी बनो, निरंतर नहीं, कम से कम योग में जब बैठते हो शरीर शरीरधारी याद नहीं आवे, हो सकता है शरीर में बैठते हैं कहां से याद आता है, कहीं से आता नहीं है, हमारे अंदर ही है। दो, याद किसको आता है, बुद्धि को याद आता है, किसी को देखती ये मन सोचता है ये कौन, ये क्या, इसने बैच क्यों पहना है, ये मन सोचता है, संकल्प शक्ति, बुद्धि को, कोई भी नहीं ऐसे बैठे हो, बुद्धि को पुरानी पुरानी बातें याद आती है। इसलिए बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर बुद्धि योग है, याद करो कहा, चिंतन नहीं मंथन है, मंथन माना बुद्धि करती है। तो यह एक व्यवस्था है, अगर योग में बैठो कोई भी विचार नहीं आएंगे, बहुत कुछ है अंदर वो बाहर नहीं आना है, क्योंकि मन और बुद्धि को हमें ज्ञान के आधार से चलाना है। अगर ज्ञान के आधार से आप नहीं चलाते हो तो ये मन और बुद्धि अपने स्वभाव संस्कार पुराने संस्कार के अनुसार चलेगा। मन कभी भी खाली नहीं रहता है, बुद्धि भी कभी शांत नहीं, कोई भी मन जीत नहीं है यहां। बाबा तो चाहता है मन को जीत लो, आप जब चाहते हो तब विचार है। आप बना कौन? बुद्धि, शरीर नहीं। तब आप कहते हो मेरा मन अशांत है, चंचल है। कौन कह रहा है? बुद्धि। मेरे संस्कार ऐसे है, बुद्धि नेत्र देखता, मेरे अंदर ऐसे संस्कार है, सारा दिन में ऐसे याद आता है, ऐसे विचार चलते हैं, ऐसे स्वप्न आते हैं। तो बुद्धि को पता है मेरे अंदर क्या भरा हुआ है, मैं पाप आत्मा हूं या पुण्य आत्मा हूं। ये समझने के बाद तब कम से कम अपना विकर्म विनाश करने के लिए, बंधनों से मुक्त होने के लिए, कर्म बंधन है, बहुत प्रकार का बंधन है, बहुत आत्माओं से हमारा हिसाब किताब है, वो भी चुक्त करना पड़ेगा। किससे लिया है तो देना पड़ेगा। तब बाबा ने कहा ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान जब सुनते हो तो सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं है, हमने मुरली सुनी बस हो गया, तो ये भक्ति की परंपरा है। प्रवचन सुना, रामायण महाभारत गीत सुना, इतना ही, उसको यूज नहीं करते, आचरण में नहीं ला रहा है। उसके कारण हम जब सुनने के बाद यहां कल थे वह आज भी वहां ही है, तो कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। मनुष्य जीवन में परिवर्तन चाहता है, वह अपने आप नहीं होगा। एक पत्थर के साथ एक हीरा रखो तो वो हीरा अपने अपने पत्थर अपने आप हीरा नहीं बनेगा, उसने उससे कुछ लेना चाहिए, सीखना चाहिए। तो बाबा रोज मुरली सुनाता है, तो उसमें से एक शब्द जो आपको अच्छा लगा, क्योंकि हर मुरली में चार सब्जेक्ट होते हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा, सेवा कैसे करना चाहिए, जैसे आज बाबा ने बताया शुरू में ही सेवा कैसी करना चाहिए। विश्व के अंदर यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्या, सारे विश्व को संदेश देना चाहिए, तो सेवा कैसे करना, योग कैसे करना, श्रीमत क्या है, मनमत क्या है, धारणा क्या होना चाहिए, हर चीज सिखाता है। तो अपने लक्ष्य के अनुसार एक मुरली के पॉइंट नोट करना जरूरी है। सुनने वाला आपको नहीं, हमें भी याद नहीं रहता है, सुना चला गया बाहर जाते ही, यहां यहां बैठे बैठे कुछ याद आएगा, कुछ का फोन आएगा, तो क्या उसको उस दुनिया का कोई ना कोई समाचार बताता है, तो ये चला गया यहां ही। तो इसलिए सुनने के बाद हमारी कमाई, हमको पता है कि याद नहीं रहता है, तो एक शब्द सारे मुरली से जो आपको अच्छा लगा, तो सदा भी नहीं, 10-15 दिन बाद में आदत बनेगी, उसको लिख के रखो, ये मुझे आज करना चाहिए। लिख के रखा, यहां से बाहर जाते जाते पढ़ो, नहीं तो हमारे पास बाबा ने एक ऐसी व्यवस्था बनाया, मुरली क्लास के बाद एक मिनट बैठकर जो सुना वो रियलाइज, विजुअल ये कह लो, रियलाइज करो कि क्या सुना, क्या करना चाहिए। इसलिए शुरू में मुरली क्लास के बाद म्यूजिक बजता था, तो उसके अंदर आपका मन, ने तो गीत सुना तो गीत का विचार आएगा, जो सुना मुझे इससे बाहर जाने के बाद क्या करना चाहिए, आज बाबा ने मुझे ये होमवर्क दिया, रिवाइज करो कहा। कहीं कहीं सेंटरों में बहनें ऐसे करती, मुरली के बाद पूछती है, आ एक एक जो बैठे बाबा के बच्चे एक एक पॉइंट सुनाओ, क्या सुना क्या सुना, तो यहां रिवाइज होता है, नहीं तो भूल गए क्योंकि लिखते भी नहीं है। तो अगर थोड़ा दिन 10-15 दिन अगर आप लिख के रखेंगे, बाहर गए नाश्ता करने जाएंगे, कोई मिला उनको भी शेयर करो, उनको भी समझाओ, देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया। एक 2-3 लोगों को भी सुनाते हो, अंदर रिकॉर्ड होता है, संस्कार बनता है, ये ज्ञान धन है। तो ये एक अविनाशी ज्ञान है, ये कोई शास्त्रों से किताबों से कहीं से नहीं आया, ये ऊपर से आया है, परम धाम से शिव बाबा आया है। तो इस ज्ञान के अंदर वो शक्ति है, अगर आपके बुद्धि में एक भी ज्ञान का पॉइंट बैठ गया तो संसार में चलते समय किसी को देखते ही आकर्षण होगा, कुछ देखते ही इच्छा होगी, किसी ने कुछ गलत बोला, क्रोध करने की इच्छा होंगी, आएंगी, संस्कार है। अगर जिसके पास ज्ञान है वो बुद्धि तुरंत कहेंगे ये नहीं देखना, ये नहीं खाना। अगर एक बच्चा माँ के साथ बैठा है तो बच्चे अगर कुछ करते हैं आवाज, माँ सिखाती है। अभी हमको कौन सिखाएगा? संसार में चलते हुए हर कदम में कर्मों का हिसाब किताब है। तब सारे शास्त्रों में सब जगह कहा, चाहे लाख करो चतुराई, ये लेप मिटे ना रे भाई। सिर्फ ब्रह्मा कुमार इसके अंदर शिव बाबा ने आके कहा कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करते हो, विकर्म भस्म कर सकते हो, विनाश कर सकते हो, सिर्फ ब्रह्मा कुमार इसके अंदर। और वो संगम पर थोड़े समय, और उसकी विधि भी बताया। तप का ये बहुत बड़ा वैद्य है, सुप्रीम सर्जन है, आत्मा का सर्जरी करता है, जो अंदर पाप है विकर्म है उसको मिटाता है। तो वो सिर्फ ब्रह्मा कुमार इसमें अंदर हमने सुना, नहीं तो सारे शास्त्र दे लो, किसी भी धर्मों में जाओ, चाहे लाख करो चतुराई, ये लेप मिटे ना रे भाई। तो यहां हम आए अनेक जन्मों के किए हुए हिसाब किताब चुकतू करने के लिए, और आत्मा कर्मातीत बन करके कोई हिसाब किताब भोगना नहीं है, नहीं तो शरीर में भोगना पड़ता है। बीमारी आए और कुछ हुआ, हर कदम में, क्योंकि कांटों का जंगल है ये, कोई सहयोग भी नहीं देगा, कोई साथ भी नहीं देगा। तब का एक बल एक भरोसा। अगर एक बाबा को अच्छी तरह से जानते हो और उसका ज्ञान बुद्धि में एक बूंद दो भी नहीं चाहे, शिव बाबा के एक बूंद के प्यासे, अगर एक बूंद बुद्धि में समझ में आया, सुनते सुनते नोट करो, बाहर जाते ही भूल जाता है, तो किसी ने किसी को सुनाओ, रिकॉर्ड हो गया, कर्म किया। फिर आप सारा दिन कर्म करते समय आएगा, कोई ना कोई दृष्टि जाएंगी, कुछ खाने की इच्छा होंगी, नहीं होंगे ऐसे नहीं, संस्कार है बहुत जन्मों के, तुरंत बुद्धि कौन रोकेगा? बुद्धि कहेंगे ये नहीं देखना, ब्रेक है वो। कौन समझाएगा? मोबाइल पर आज क्या क्या आता है, जो देखा वो आएगा, कहां जाएगा? आप वीडियो में जो कुछ देखते हो मोबाइल में वो अंदर रिकॉर्ड होता है, रात को सो गए देखो उसी का स्वप्न आएगा। आप सारा दिन सवेरे शाम को बाबा के सामने बैठते हो, बाबा का चित्र भी देखते हो, लक्ष्मीनारायण का चित्र भी देखते हो, कभी भी स्वप्नों में आता है देख लो बाबा आता है? सारा दिन देखते हो लक्ष्मीनारायण का, देवी देवताओं का चित्र, क्यों नहीं आता है? बाकी कोई नेगेटिव कोई भी चीज देखो तुरंत रात विचार भी चलेगा कि चुंबक लोहे को ही खींचता है, उसको सोना भी दे दो सामने चुंबक के सामने नहीं खींचेगा। तब बाबा ने कहा पत्थर बुद्धि है, तो बाबा पारस बनाने आया है, अपने आप नहीं बनाएगा। तो बाबा बनाता है सभी को पारस बुद्धि बनाएगा, विधि बताता है। तब का भाग्य और भाग्य विधाता, भगवान कौन? भाग्य विधाता, विधि बताता है। बच्चे एक रोज बूंद मुरली का नोट करो, अपने आप को पढ़ाओ, और कोई मिला उनको भी दान करो। अगर इतना आप करते हो सवेरे दिन में शाम को दो तीन दफा भी, तो ये बुद्धि को स्वच्छ करता है, दिव्य करता है। जो व्यर्थ विकल्प बुरे विचार ये सब आता है, अंदर भरा हुआ है, ये कौन साफ करेगा? एक ही दिन में साफ भी नहीं होगा। हाँ कहीं भी आकर्षण होता है तुरंत बुद्धि, बाबा कहते फुल स्टॉप लगाओ, तो कौन लगाएगा फुल स्टॉप? जिस बुद्धि के अंदर ज्ञान है। आज बाबा ने कहा था ये नहीं देखना, ये नहीं खाना। हाँ सामने वाला गुस्सा करता है, गलत बोलता है, उसका धर्म कर्म, मुझे क्या करना है? ज्ञान है तुरंत ब्रेक लगाता है। ये जिसने सीखा तो वो अपने जीवन को परिवर्तन कर सकता है, नहीं तो कर्म बंधन है। वो बोलेगा, आप भी बोलेंगे, 5000 साल के लिए फिर से कर्म बंधन में चक्कर में आता है। सामने वाला परिस्थिति आएंगी नहीं आएंगे ऐसे नहीं, कोई भी हो, बड़े हो छोटे हो, 50 साल हो, एक दिन का भी ज्ञान वाला हो, ये कुरुक्षेत्र है, तीर आएंगे तो इसके लिए बाबा ने ये अस्त्र और शस्त्र दिया है। ये ज्ञान अस्त्र और शस्त्र है, उसमें एक भी रखो। अब बहुत कुछ याद रखना चाहिए लेकिन संभव नहीं है। और आज की दुनिया में भी, ये मोबाइल की दुनिया में भी कोटों में कोई है जो ज्ञान, आप देखना साक्षी होकर अब इधर बैठे हो, बाबा से मिलन के लिए आए हो और कुछ काम नहीं, एक ने भी कल मुरली सुनी, एक ने भी कल के मुरली के पॉइंट किसी को सुनाया? अपने आप से पूछ लो। सुनकर आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, किधर फोन भी किया आपने, जो घर वाले सेंटर वाले और को भी, उनसे बात भी किया, लेकिन उनको भी ये मुरली के पॉइंट सुनाया, शुभ समाचार सुनाया? नहीं आता है कौन, जिसने जिसने सुनाया वो हाथ उठाओ देख लो। हाँ देखो कितने हैं, उसमें से कितने हैं, तब का कोटो में कोई। अच्छी चीज मिली बांटो, ये सेवा है। उनको पता नहीं, उन्होंने सुना नहीं, सुना भी समझ में नहीं आया, तो अच्छे एक मुरली के बन बाबा ने क्या कहा वो सुनकर, मतलब आपके अंदर ये धारणा है, ये आपके अंदर रिकॉर्ड हो गया है, तो आपने औरों को भी दान करो। ये सेवा करते हो, बहुत आत्माओं से हिसाब किताब है, लेन देन है, बहुत जन्मों के हिसाब किताब से मुक्त हो सकते हो। हाँ कोई परिस्थिति आती है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ कहता है, बुद्धि के अंदर ज्ञान है तो अपने आप को फुल स्टॉप लगाता है, लेट गो करता है, छोड़ दो, जो हो ठीक है। हाँ अगर वो अंदर खाता भी है, बाबा के कमरे में बैठते बाबा ने कहा कि मुझे बताओ मैं आया हूं, बोझ लेने आया हूं, तो बाबा आपके बच्चों ने ऐसे कहा, बाबा आपके बच्चों ने ऐसे कहा, तो बाबा ने कहा मुझे दे दो मैं आया हूं। आपस में भाई भाई लड़ो नहीं, भाई बहने लड़ो नहीं, माँ बाप है, धनी है, वो सुनता भी है, फिर भी कहा भगवान के घर में अंधेर नहीं है, देरी है, मैंने कुछ किया था उसका रिटर्न आता है। तब बाबा कहता है सूली को क्या बनाता है, रुई बना देता है, अंश रह देता है, क्योंकि हमारा इतना बल नहीं है, तो उसको सदा के लिए मिटाने के लिए वो भी बता विधि दिया, पहले फुल स्टॉप लगाओ, रोक लो अपने आप को, दोबारा मेरा हिसाब किताब न बने। सामने वाला सब कुछ करेगा, ऐसे नहीं कुछ नहीं करेगा, परिस्थिति हर प्रकार की आएंगी, सूक्ष्म भी आएंगे, विचार भी आएंगे, बोल भी निकलेगा, दृष्टि भी जाएंगी, कोई चीज बाहर की खाने की इच्छा भी होंगी, संस्कार पुराने हैं, पांच विकार वो भी जागृत होंगे, कहां जाएंगे? तो यहां ही परिवर्तन अगर नहीं किया, अगर देख लो आप आज किसी के शरीर में शुगर की बीमारी है, दवाई ले रहा है ठीक नहीं हुआ, शरीर छूट गया, बीमारी खत्म हो गया ना, सोच लो खत्म हो गया, दवाई ले रहा था खत्म ठीक नहीं हुआ, शरीर छूट गया, बीमारी खत्म हो गई, आप क्या कहते हो? मुझे बीमारी है, शरीर को बीमारी नहीं कहते हो, मैं आत्मा, आत्मा के अंदर रिकॉर्ड हो गया, मुझे बीमारी है। तो संस्कार शरीर में अंतर, आत्मा सब कुछ करता है, तो संस्कार लेता, देखो बच्चे जन्मते ही शुगर है, थोड़े समय के अंदर चश्मा लगाना है, क्यों? कि संस्कार कैरी फॉरवर्ड होते हैं। इसी को शास्त्रों में कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे, बार बार जनन मरण के चक्कर में आना पड़ता है, क्यों? मिटाया नहीं है। सिर्फ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शिव बाबा आके कहते बच्चे ये आत्मा के अंदर संस्कार है, पतित आत्मा कहा, बीमार शरीर कहा, आत्मा नहीं, आत्मा पाप आत्मा, पतित है कैसे पता चला? तो बताया कि एक काम और क्रोध के स्वप्न आते हैं, अंदर पाप है, अगर इसको मिटाया नहीं, अंश भी रह गया, सत्युग में जा सकते हो आप ही बताओ, जा सकते, छुट्टी मिलेगा, अंश था नहीं, यह हमको पता है, ज्ञान सुना है, अभी मुझे ये पुरुषार्थ, ये रोज पुरुषार्थ करना है कि ये कैसे मिटाओ। सिर दर्द है, सोचते हो कौन सी दवाई ले लो, कितना दिन ले लो, किसके पास मिलेगा, वही चिंता रहती है। ये बीमारी मिटाना है, अगर अभी मिटाया नहीं 5000 साल तक दोबारा चांस नहीं मिलेगा, कल्प में एक ही दफा आता है। इसको कहा ज्ञान को समझो बाबा को, समझदार बच्चे चाहिए, ज्ञानी तो आत्मा चाहिए। नहीं तो गीता में कहा 4 प्रकार के यज्ञ करते हैं, एक है लोक संग्रह अर्थ यज्ञ। एक बहुत बड़ा शेठ जी है, उसने यज्ञ किया, 10 लाख लोग आए, लोक संग्रह, लोगों को इकट्ठा करना, क्या हुआ करके। दूसरा धन संग्रह अर्थ, मैं यज्ञ रच रहा हूं 1-1 लाख रुपया दे दो, धन इकट्ठा करने के लिए यज्ञ। और एक प्रतिष्ठा के लिए, मैं राजा, ये मेरी बॉर्डर है, मेरी एरिया है, प्रतिष्ठा के लिए यज्ञ। और एक यज्ञ है ज्ञान अर्चन करने के लिए। तो ये बाबा ने कल कहा था, सिर्फ ये रुद्र यज्ञ नहीं, रुद्र ज्ञान यज्ञ है। ये यज्ञ किसके लिए, वो रुद्र भगवान क्यों आया है, शिव बाबा क्यों आया है, ज्ञान देने आया है। तो ये ज्ञान अर्चन करते हो, अच्छी तरह से सुनते हो, 1-2 पॉइंट नोट करते हो, अपने आप को पढ़ाते हो। आज मुझे यहां से जाने से पहले ही आज सारा दिन मुझे क्या करना है, जैसे स्कूल में बच्चा भी देख लो होमवर्क करता है तब पास होता है, स्कूल में जाने से नहीं होता है, स्कूल में जाके घर में आने के बाद होमवर्क करता है। तो यहां भी ये होमवर्क, बाबा सारा दिन कर्म करते समय कर्मों से दोबारा कोई मेरे कर्म न हो, दृष्टि ऐसे न जाए, बोल ऐसे न निकले, है ना, कर्म ऐसे न हो, तो ब्रेक चाहिए। परिस्थिति आती है, बोलने की परिस्थिति आएंगी, नहीं ऐसे नहीं। आज देखो सारा महाभारत कैसे बन गया, द्रौपदी का एक शब्द, क्या से क्या हुआ। तो ऐसे संसार में कोई भी एक शब्द हमारा निकलता है, कोई सुनना नहीं चाहता आज के दुनिया में, आज नहीं तो कल बदला लेगा। तो इसके लिए बाबा ने कहा सोच समझ कर बोलो। तो कैसे भी कहा, क्या सोचे, हाँ इनको देखते याद आता है, इन्होंने 1 साल पहले 10 साल पहले गुस्सा किया था, परेशान किया था, याद नहीं आएगा सर, नहीं आएगा 100%। तुरंत बुद्धि कहेंगी हाँ शिव बाबा ये आपके बच्चे हैं, आप इनको समझा, आप सारे विश्व में शांति स्थापन करने आए हो, पहले आप अपने बच्चों को तो समझाओ, इनको ठीक, इनको शांति की शक्ति दे दो, इनको समझाओ, ये शुभ भावना, क्योंकि उनको सजा नहीं देना है, उनको परिवर्तन करना है। ऐसे नहीं कि संसार में चलते हुए हमारे मन एकदम खाली है, हर एक व्यक्ति को देखते ही, उनके संबंध संपर्क में आते ही वो याद आता है, गया नहीं, तो वो आते ही तुरंत बुद्धि के अंदर ज्ञान अगर है तो शुभ भावना कहा, उनके प्रति शुभ, इनका भी परिवर्तन कौन करेगा, हम नहीं कर सकते हैं, हमारे पास वो पावर नहीं है। बाबा ने कहा मुझे, आज बाबा ने कहा कंबाइंड कंपेनियन, कंपनी मेरे साथ कौन है, सर्वशक्तिवान है, बाबा कहता मुझे यूज करो। तो देखते ही मां बाप के साथ हम अकेले नहीं है संसार में, हमारे साथ सर्वशक्तिवान, साधारण भगवान भी नहीं, सर्वशक्तियों से भरा हुआ, तब का सर्वशक्तिवान ऑल माइटी अथॉरिटी है, ये स्मृति है। इसलिए गीता में कहा नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, और कुछ नहीं करना है, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये मोह है, इससे मुक्त होना चाहते हो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, स्मृति लब्धा, स्मृति मना याद, अगर ये याद है हमारे साथ सर्वशक्तिवान शुभ बाबा है। तो कहते हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी, बाबा कहता है बच्चों को हमको क्या देता है, समान देता है, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, हमारे साथ कौन है, हम किसके बच्चे हैं। देखो राजा के बच्चों की चलन कैसे, एक मिनिस्टर का बच्चा कैसे चलता है, एक भिखारी का बच्चा कैसे चलता है। तो ये स्मृति अगर सिर्फ याद, वो बुद्धि काम करती है अपने आप, तो ये मोह ममता आकर्षण ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, तभी तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कहा, तभी तो तीव्र पुरुषार्थ कहा। तो ये स्मृति अगर रखते हो तो वो ज्ञान रोज अलग अलग बाबा देता है। हमने देखा कि ये एक ही विश्वविद्यालय है जहां रोज अलग अलग प्रकार के ज्ञान मिलता है, नहीं तो एक ही गीता एक ही रामायण कितने सालों से चल रहा है। तो यहां नए नए पॉइंट्स देता है, तो नए नए चीज, एक एक शब्द नोट करो। देखो 30 दिन में 30 मुरली के पॉइंट या अस्त्र शस्त्र जमा किए आपने। अगर आप सबने रामायण सुना हो तो रामायण में आता है जब श्री राम वनवास में गए उनके पास कुछ लेके नहीं गए थे, तो वहां साधु संतों ने जो तपस्या करते हैं तो उन्होंने देखा श्री राम आप ऐसे आए हो, यहां बहुत बड़े राक्षस है, बहुत बड़े प्राणी है, तो उन्होंने एक एक ने उनको वरदान दिया, अस्त्र दिया, वरदान के रूप में देते हैं, अस्त्र ऐसे नहीं देते हैं। तो एक जगह आया, लक्ष्मण भी गया सीता को ढूंढने के लिए, सीता भी गई, राम अकेला हो जाता है। उस समय उसके ऊपर खरभूषण, रावण का खरभूषण आकर के उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, सारे अस्त्र खत्म हो जाता है। तब आकाशवाणी होते, हे राम आपके पास ये अस्त्र है, ये स्मृति, वो अस्त्र छोड़ा सब मूर्छित हो गए हैं, ये हमारी यादगार है। जैसे रोज एक एक मुरली के पॉइंट आप जमा करते हुए, अस्त्र है ये। तो समय आता संसार में चलते हुए कोई परिस्थिति आती तुरंत याद आता, अरे बाबा ने उस दिन कहा था बच्चे ऐसी परिस्थिति आए तो ऐसे करो। तो बाबा टचिंग देता है, अगर अंदर कुछ भरा ही नहीं तो क्या निकलेगा। टचिंग करंट देता है, शक्ति देता है। तो ज्ञान अंदर चाहिए, टेप रिकॉर्ड के अंदर, मोबाइल के अंदर सब कुछ है, डिस्चार्ज है, चार्ज नहीं तो काम करेगा। अंदर भरा हुआ है, ज्ञान सुनते हो तो बाबा करंट देता है, शक्ति देता है। अगर अंदर रिकॉर्डिंग है ज्ञान का पॉइंट, वो जागृत होगा। क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो एक सेकंड के अंदर परिस्थिति से मुक्ति मिलती है, समस्या आती है तो तुरंत कैसे क्या करना चाहिए सुलझा देते हो एक मिनट के अंदर। ऐसे नहीं किसी के पास परिस्थिति समस्या विघन नहीं है, हर एक के पास है। तो ये अस्त्र और शस्त्र, तो ये जो जमा करते हो तो उसको बाबा ने कहा, तो ये कर्म ब्राह्मण उसको कहा। अगर आप कहते अपने को ब्राह्मण, कम से कम बाबा के बहुत सारे श्रीमत है, कम से कम 3 श्रीमत अगर आप याद रखते हो, धारण करते हो, तो सारे श्रीमत इन 3 श्रीमत के अंदर आ जाता है। एक सवेरे उठते ही शक्ति का स्नान करो, अर्थात सवेरे सवेरे योग करो, आत्मा समस्य बाबा को शक्तिशाली बनाओ, अपने आप को शक्ति चाहिए, ये पहला श्रीमत है। उसके अंदर बहुत सारी विधियां है, तो वो विधि एक सुनाया कि आत्मा समझ मुझे याद करना, वो आत्मा के अंदर शक्ति भरने के लिए, पहला श्रीमत। दूसरा, संसार में चलते दोबारा कोई पाप नहीं होना चाहिए, उस पाप कर्मों से बचने के लिए ज्ञान चाहिए। परिस्थिति विघ्न माया रावण बहुत कुछ आएगा, उन सब से हम कैसे पार करें, यह अस्त्र और शस्त्र जमा रखो। तो इस परिस्थिति में ये करना चाहिए, इनके साथ ऐसे चलना चाहिए, इस परिस्थिति में ऐसे करना चाहिए। तो ये ज्ञान अगर बुद्धि में है तो ये ज्ञान धारण करना चाहिए, अस्त्र और शस्त्र है, उसकी भी विधि है। तो वो सुनाया, एक मुरली के पॉइंट नोट करो, लिख के रखो, अपने आप को सवेरे शाम को अपने आप को पढ़ाओ, कोई मिला उनको सुनाओ, ज्ञान दान करने की आदत डालो, ये सबसे बड़ा दान है। तो अगर ये पढ़ने की तरीका है। तीसरा है, स्वच्छता ही पवित्रता है, हर प्रकार की स्वच्छता चाहिए। कोई कहेंगे मैंने शादी नहीं किया मैं पवित्र हूं, नहीं, ब्रह्मचारी का, ब्रह्मा के आचरण, किसी को मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं होना, मेरा बोल ऐसे न हो, मेरे कर्म ऐसे न हो, मेरे आचरण ऐसे जो दूसरों को तकलीफ हो। वो चारों तरफ देखता है, मेरे बोल से चलने से कर्मों से दूसरों को तकलीफ हो रहा है। आप कहेंगे मुझे, मैं अपना देख रहा हूं, नहीं, आपके चारों तरफ, क्यों हम परिवार में है, ये वसुधैव कुटुंबकम का, सन्यासी नहीं, अकेले जंगल में नहीं है, परिवार के अंदर है। तो इसके लिए स्मृति चाहिए कि स्वच्छता, इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल और मेंटल क्लीननेस इज प्यूरिटी। अब इसके अंदर खोलना है किस प्रकार की पवित्रता, तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट सुनाया बाबा ने। पहले गृहस्थ आश्रम कहा, घर नीट क्लीन स्वच्छ, कोई मक्खी मच्छर नहीं, साफ स्वच्छ है, ये पहली पवित्रता, ये स्वच्छता। शरीर को पसीना आता है, दो दफा स्नान करो, साफ स्वच्छ होना चाहिए। देवताओं के शरीर से सुगंध आता था, तो ऐसा स्वच्छ शरीर हो, कपड़े, खाना, देखना, सुनना, बोलना, सोचना, ये बाद में। तो ये स्वच्छता पवित्र, अगर ये है तब बाबा ने संपूर्ण पवित्रता है। वो जो संपूर्ण पवित्रता है वो सत्युग में जाएगा। सिर्फ मैंने शादी नहीं कहा, अभी भी क्रोध है, किसी को देखते नफरत ईर्ष्या है, ये पवित्रता कहेंगे? तो कहते सिर्फ तीन ही श्रीमत है, सवेरे योग विधि पूर्वक, दूसरा ज्ञान सुनने की विधि, तीसरा स्वच्छता, हर प्रकार की स्वच्छता चाहिए। तो ये तीन श्रीमत को अगर आप याद रखते हो, उसको कहते धारणा, तो हमारे जीवन में हर कदम में परिवर्तन दिखाई देते। ये नहीं खाना, ये नहीं देखना, ये नहीं बोलना, अपने आप बुद्धि के अंदर धारणा है। बुद्धि सारे शरीर को चलाती है। जैसे रात को देखो आप सो गए, मच्छर बैठ गया, कौन मारता? आंखें बंद नींद में हो, हाथ अपने आप काम करता है। तो बुद्धि जागती ज्योत है, उसके अंदर ये ज्ञान जाना चाहिए। वो कभी भी हमसे गलत काम करना नहीं देगा। अगर बुद्धि है, उसके अंदर ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तब अंत में बेहोश हो जाते हैं, अंत में पश्चाताप होता है, ये क्या हुआ, किसने किया था? हमने किया है। क्यों किया? कि बुद्धि के अंदर ज्ञान नहीं था। तब कहा सत्संग से सत गति होती है। अगर सत्संग करने के बाद भी दुर्गति है, हमारे से गलत काम हो रहा है, गलत विचार आ रहे, गुस्सा आ रहा है, तो सत्संग से सदगति हुआ? तो यह सत्य का संग है। यहां कौन सुनाता है? सत्यम शिवम सुंदरम कहा, शुभ बाबा करके सत्य तीनों कालों में सदा के लिए सदा शिव कहा, उसके एक बूंद जरूरी है। बहुत कुछ ज्ञान सुनना चाहिए, बहुत कुछ सुन लिया, कुछ नहीं होता। बहुत कुछ खा लो वह हजम नहीं होता है, थोड़ा सा खा लो, हजम को, ईट लेस डाइजेस्ट मोर, वो शक्ति देता है। तो अगर एक एक बूंद भी रोज लेते हो, 30 दिन में 30 बूंद, ये हीरे है। ये अगर अपने अंदर, आज बाबा ने कहा था अपने को श्रृंगार करो, कल कहा था कैसे, ये ज्ञान रत्नों से भरपूर है। कभी भी कुछ परिस्थिति आई, इस परिस्थिति में ये करना चाहिए। हाँ, फिर आया कि ये अगर हमारे मिट गया, हमने फुल स्टॉप लगाया, नहीं, फिर बाबा ने कहा बच्चे सदा के लिए भस्म करो, फिर आत्मा समझकर शिव बाबा को निराकार परम धाम में याद करो। योग अग्नि है, अग्नि में कोई बीज डालो भस्म, वो दोबारा उगेगा नहीं। अगर आपने भस्म नहीं किया, कुछ गलत हो गया, सॉरी कह दिया, चला गया, वो उधर ही है, फुल स्टॉप लगा दिया, अंदर ही है, फिर आएगा। तो उसको कहा यहां ही संगम पर ही शिव बाबा, आज बाबा कल रात को कहा मैं चैतन्य में आया हूं, पालना कर रहा हूं, जड़ मूर्ति नहीं है, ज्ञान सिर्फ चैतन्य में आया हूं, ठाकुरों की पालना करता हूं, मैं खिलाता हूं, पिलाता हूं, पढ़ाता हूं, तो चैतन्य में आके करता है। तो चैतन्य में आया, अब मुझे याद करो, मुझे सुनाओ, मुझे दे दो परमधाम में, तो मेरे शक्ति से भस्म करेगा। उसको योग अग्नि कहा। नहीं तो कुछ गलत होता है, हम सॉरी कहते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं, छोड़ दो, गया नहीं, हाँ टेम्पररीली फुल स्टॉप लगा दिया। शाम को सवेरे कुछ हुआ, दिन में शाम को योग में बैठो, आत्मा चिंतन करो, शिव बाबा का चिंतन। शिव बाबा कौन? पवित्रता का सागर है। बाबा मुझे आपके जैसे पवित्र बनना है, लेकिन आज मेरे मन में ये गलत विचार आया, आज मेरे मुख से ये गलत निकला, तो ये कौन मिटाएगा? आपने कहा, मैं मिटाने आया हूं, पतित को पावन बनाने आया हूं, आपके शक्ति से ये मिटाओ, दोबारा नहीं करेंगे। तो बाबा ने कहा योग अग्नि, परम धाम में आके बाबा से बताओ। सिर्फ फुल स्टॉप लगाया, चला नहीं गया। तो अगर ऐसे करते हो, अनेक जन्मों के कर्म बंधन है, तब का सब कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हो, तो उसके चेहरा जो आप बाबा ने कहा अनुभव कराओ, आप सदा प्रसन्न रहते हो। अगर कोई बुरे स्वप्न आते, एक बुरे विचार चलते, उसको कितना भी हंसाओ तो हर्षित रहेगा वो, अंदर दर्द है। जिसके अंदर ऐसे सब कर्म बंधनों से मुक्त है वो स्वतः ही प्रसन्न है। उनको मैं खुश रहना चाहिए नहीं, नेचुरल। जैसे भारत के देखो ग्लोब पर कौन बैठा है, श्री कृष्ण बैठा है। कैसे बैठा है वो, तलवार लेके नहीं बैठा है, बंदूक लेके नहीं बैठा है, मुरली लेके बैठा है। तो मुरलीधर कहा, अगर हमारे साथ सदा ये मुरली है बुद्धि में तो वो प्रसन्न है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ऐसे बैठा नहीं है, मुरली हाथ में है तब प्रसन्न है। तो बाबा भी यही कहता, संगम पर मुरली सदा बुद्धि रूपी हाथ में रखो। कभी भी सारात में भी कोई पूछेगा, कोई मिलेगा, तुरंत आपके द्वारा आना चाहे। आज बाबा ने ये कहा, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मणों की बुद्धि में आज की मुरली के पॉइंट जागृत रहना चाहिए। नहीं तो कहेंगे आप, हम 50 साल से ज्ञान में चलता हूं। हाँ चलते हो, लेकिन ज्ञान मेरे अंदर नहीं है। उसको कहा धारणा। आप जानते भी हो, देखो बच्चा एक स्कूल में जाता है, 6 सब्जेक्ट होते मिनिमम, 1 साल 6 सब्जेक्ट पढ़ता है। 1 साल के बाद एक प्रश्न पूछा तो लिखता है ना, कैसे लिखता है वो, किताब देख के लिखता है। तब का बहुत हुशार, समझदार, 6 सब्जेक्ट सारे विषय बुद्धि में भर देता है। जो भी प्रश्न पूछा 50-10 पेज लिखता है। तो कहा बुद्धि की परीक्षा। यहां भी कल बाबा ने क्या कहा था, 2 दिन पहले क्या कहा था, तो हमसे भी तो बच्चे अच्छे है ना। बाबा कहते ज्ञान की धारणा, ये अस्त्र और शस्त्र। ये कुरुक्षेत्र में विजयी बनना चाहते हो, कर्म बंधनों से मुक्त होना चाहते हो, एक ही समय है ये सारे कल्प के अंदर। और उसमें भी अभी और कर्म बंधनों में फंसे, किसी से लोन लिया, पैसा लिया, दिया, मांगा और कुछ किया, ये कर्म बंधनों में फंसना है। तब बाबा ने कहा कर्म बंधनों से मुक्त होने का ये समय है। अगर इस समय आपने अपने कर्म बंधन मिटाया नहीं, दोबारा चांस मिलेगा? सारे कल्प में दोबारा चांस नहीं मिलेगा, फिर नेक्स्ट कल्प। तब तक इंतजार करना, कितना भी रो लो आप, कितना भी कुछ करो, चाहे लाख करो चतुराए, इसको कहते समझ। तो बाबा ऐसे समझदार बच्चे चाहता है, ऐसे समझदार बच्चे अपना गुप्त पुरुषार्थ करते हैं। और पुरुषार्थ भी बहुत कुछ नहीं है, 2 ही काम है। एक भगवान शिव बाबा का एक मुरली के पॉइंट रोज 10-15 दिन, वो भी सदा भी नहीं चाहिए, इतना सहज करके देता है। नोट करो, अपने आप को बार बार पढ़ाओ, क्योंकि आदत नहीं है हमारे अंदर, आदत डालो। कोई मिला इधर उधर के समाचार सुनाने के बदली मिलो जरूर, बात भी करो। देखो कल बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया था, गुलजार दादी बोलती थी जब शुरू में मधुबन में दादियां थी, रोज एक एक दादियां क्लास करती थी। एक दिन गुलजार दादी ने बोला कि क्लास में बैठे था हम भी, तो खुश रहो, खुशी बांटो। हम क्लास करके बाहर आया, दादी ने तो कुछ दिया नहीं है, कोई मिला तो मैं क्या बांटू। कुछ खुश रहो, खुशी बांटो, बांटने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो मैंने कहा दादी ने तो कुछ दिया नहीं बांटने के लिए। फिर याद आया, हाँ बाबा ने सवेरे ज्ञान रतन दिए थे। अगर वो आपको याद है, धारणा है, कोई मिला उसको मुरली के पॉइंट सुनाओ और उसका चेहरा देख लो, खुश हो जाता है, आपको भी लगता मैंने सेवा किया। ये ज्ञान दान महादान है, जितना देते हो। बाबा ने इतना तक कहा, एक व्यक्ति को एक मुरली के पॉइंट सुनाओ, 1 जन्म के लिए धनवान बनेंगे। किसने बनाया गरीब, किसने इनको करोड़पति बनाया, ऊपर से पैसा धन आया? तो ज्ञान दान करो, सिर्फ हमारे अंदर भक्ति के संस्कार है, सुनना है, इतना ही। बाहर जाते किसी को आप देखना, कभी भी गेट के बाहर जाते ही पूछना, क्या सुना, बहुत अच्छा था, क्या था वो, एक भी पॉइंट सुनाओ। ये आदत बनी, भक्ति के संस्कार है। बाबा ज्ञानी तो आत्मा बनाने के लिए आया है, तो थोड़ा सा पुरुषार्थ करो, थोड़ा सा मेहनत करो, बहुत नहीं। बाबा ने कहा 1 कदम रखो, 1000 कदम मैं मदद करता हूं। एक कदम मुझे करना, लक्ष्य रखो मुझे ये मिटाना है, प्रयत्न करो। अंत में बाप बच्चों को मदद करता है कि बच्चों ने हिम्मत रखी है, पुरुषार्थ कर रहा, मंजिल तक नहीं पहुंचा तो बाबा पहुंचा देता है, तो आया मदद करने के लिए। इसलिए आज कल कहा सवेरे उठो योग करने बैठो, बाबा बच्चों को सवेरे शक्ति देता है, वरदान देता है। कोई कमी है, कुछ ना कुछ है, नहीं ऐसा नहीं। डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? बीमार है तभी तो जाते हैं ना, अच्छा व्यक्ति थोड़ी जाएगा। तो पाप मिटाने के लिए आए हम, सारे कर्म के हिसाब किताब चुक्त करने के लिए इधर आए हैं। तो कर्म बंधन मुक्त है, वो सदा अपने को स्वतंत्र महसूस करता है, किसी के बंधन में नहीं आए, किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। लेने वाला नहीं, देने वाला, मुझे कुछ देना है। नहीं तो हम कह रहे बहन जी मुस्कुराते भी नहीं है, ओम शांति भी नहीं करती है, माने हम कुछ चाहते हैं नहीं। तब कहा सेवा भी करते हो निस्वार्थ, हम किसी व्यक्ति की सेवा नहीं करते हैं। किसकी करते हो? शिव बाबा ये रुद्र ज्ञान यज्ञ की सेवा कर रहे हैं हम। ये यज्ञ मन इच्छित जो हम चाहते हैं वो फल देता है। अगर हम व्यक्ति से कुछ चाहते हैं, व्यक्ति क्या देगा? आज देगा सोने का ताज, कल उतार लेगा। तो बाबा जो देता है अविनाशी देता है। क्यों? वो सदा शिव है, सदा के लिए, थोड़े समय के लिए नहीं है। तो विधि बताता है रोज कि बच्चे चलते फिरते दो ही काम करना है, बहुत कुछ नहीं करना। तीव्र पुरुषात्मा बहुत कुछ करो नहीं, आज के मोबाइल की दुनिया में तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कभी किस समय किसका समाचार आएगा, कब क्या होगा पता नहीं चलेगा, तो वो बुद्धि को खींच लेता है ना। तो साइंस ने एक बंदर दिया है, वो बंदर शांति में बैठना देगा, है ना? तो नहीं। तो शांति चाहते हैं तो कम से कम एक बुंदी मुरली के पॉइंट नोट करो। हाँ कुछ विचार आएगा, फोन आएगा, नहीं ऐसा नहीं। सुन हम सन्यासी नहीं है, आया बात किया हो गया तुरंत, बाज बाबा ने मुझे क्या कहा। कोई मिला उनसे भी लेन देन करो, उनको भी बता दो कि देखो आज बाबा ने ये कहा था, तो उन्होंने कुछ गलत बात बताया, कपड़े पर दाग लगाया तो साबुन है ये ज्ञान का पॉइंट बुद्धि में आया तो ये पाप को मिटा देता है, उसको मिटा देता है। इसको कहा पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा, आप पॉजिटिव दे दो, शुभ समाचार दे दो। कौन देगा? जिसने लिख के रखा है वो पढ़ के बताएगा आज बाबा ने ये कहा। तो ये व्यवस्था चाहिए तब अवस्था बनती है। आपको अवस्था अच्छी बननी चाहिए, हमको भी ऐसा जीवन चाहिए, लेकिन व्यवस्था, कुछ पुरुषार्थ, कुछ मेहनत, कुछ अभ्यास डालो अपने जीवन में। क्या कर सकते हैं इसमें? कोई किसी को तकलीफ नहीं, कोई संन्यास ले लो नहीं कहा, कुछ छोड़ो नहीं कहा, कुछ नहीं करना है। सवेरे खाली समय है, सवेरे 15 मिनट आधा घंटा उठो योग करो, आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करो। शाम को आधा घंटा रखो, 24, 6, 7, 8 बजे तक सब कुछ सारा दिन कर्म करो। मुरली का एक पॉइंट लिख के रखो सवेरे से रात तक, जब जब खाली मिले। कम से कम खाना खाने बैठते हो तो भी खाली है, दो हाथ दिया सबको, एक हाथ से शरीर को खिलाओ, एक हाथ खाली है निकाल के आत्मा को भी खिलाओ। दो है, एक नहीं है, जीव और आत्मा। शरीर को भी अन्न देना, खाना देना जरूरी है, आत्मा को भी। ये ज्ञान, ये अन्न है, ये शक्ति है। तो ये सुनाना है सब। 3 दफा अगर खाना खाते हो, 3 दफा भी पढ़ाओ तो भी अहो सौभाग्य। पुरुषार्थ में बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये 2 काम करो कि सब प्रकार के कर्म बंधन, अनेक जन्मों के कर्म बंधन है, कोई मिटा नहीं सकता है। बाबा ने कहा तुम मुझे याद करो, मैं आया हूं। किसके लिए आया हूं? बंधन मुक्त बनाने के लिए आया हूं। बहुत प्रकार के ऋण है, उन ऋणों से मुक्त करने के लिए आया हूं। तब का मुक्तेश्वर है, वो मुक्ति देता है। कर्म बंधनों से, हिसाब किताब से, ऋणों से सबसे मुक्त करेगा करने वाला वो। उसको याद करते हो, उसकी संसार सृष्टि है, तो वो अपने शक्ति से सबसे मुक्त करता है। सिर्फ 2 ही श्रीमत, एक सवेरे 15 मिनट आधा घंटा, शाम को समय मिले कोशिश करो, 2 टाइम करते हो नंबर 1, और 1 बूंद, और भी 10-15 दिन बाद में अपने आप आदत बनेंगे। ये 2 काम करो बस। तो बाबा ने कल कहा तीव्र पुरुषार्थ, तीव्र गति से जाना चाहते हो
तो ये तीव्र पुरुषार्थ के दो लक्ष्य रखो तो सवेरे बाबा ने कहो ऐसे तीव्र पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को बाप क्या करता है, शक्ति देता है। ठीक है, ओम शांति।
ज्ञान दान महादान। भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि अगर हम मुरली की पॉइंट्स दूसरों से शेयर करते हैं तो वो हम भी स्वयं धारण करते चले जाएंगे।
जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। तन का न गर्व कीजिए ये तो विनाशी है, तू तो है चेतन आत्मा ज्योति अविनाशी है। ज्योति सागर पिता को दिल में बसा ले, दिल में बसा ले। राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले, तेरे उजाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले।